अहले इल्म और ज़ुबान की हिफाज़त, ये तो बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। क्या मुश्किल है? इसकी ज़ुबान मुश्किल है? नहीं, इस पे अमल मुश्किल है। बहुत सारे लोग इधर फेल हो जाते हैं। पेज 54, अहले इल्म और ज़ुबान की हिफाज़त, इल्मे नाफ़े और हमारे असलाफ। अबू ज़य्याल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह गुफ्तगू करना सीखते हो इसी तरह खामोश रहना भी सीखो। हाईलाइट करें इसको। गुफ्तगू करना तो बहुत लोग सीखना चाहते हैं, मीठे बोल, अच्छी बात, पर खामोश रहना बहुत कम लोग सीखना चाहते हैं। क्योंकि अगर गुफ्तगू हिदायत बख्श है तो खामोशी हिफाजत करती है। खामोशी में दो फायदे और भी हैं। क्या? अपने से ज़्यादा आलिम से सीख सकते हो और अपने से ज़्यादा जाहिल के जहल को रोक सकते हो। क्या लफ्ज़ होगा ये? जहल। बोले जहल तो नहीं है? अबू जहल तो नहीं था, अबू जहल। तो हमारे उर्दू में काफ़ी कमी है, ठीक कर ले इन चीज़ों को। क्या मतलब पता चला इससे? अब देखिए, किस वक्त क्या बोलना है। गुफ्तगू पता क्या है? किस वक्त बोलना है और किस वक्त चुप रहना है। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कब बोलना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कब खामोश रहना है। हमारा बच्चा जब बोलना शुरू करता है, हम सब बड़े खुश होते हैं। आज ये बोला, इसने मामा का, इसने पापा का, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ठीक है। लेकिन हम खामोश रहना नहीं सीखते। तो खामोश रहना सीखना बोलना सीखने से ज़्यादा मुश्किल है। यजीद बिन हबीब रहमहुल्लाह का कौल है, बेशक ज़्यादा बोलने वाला फितनों का मुंतज़िर रहता है और खामोश रहने वाला रहमत का मुंतज़िर रहता है। कैसे भला? आप देखिए, जब आप बोलते हैं किसी को बुरा लग जाता है, कोई किसी को गलत फहमी हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा याद करें ना, अक्सर लोग सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं, मैंने ये तो नहीं कहा था, मेरा ये तो नहीं मतलब था। किसी के सामने कुछ कहेंगे, अकेले में कुछ कहेंगे। आप देखिए, बोलने की आफतें ज़्यादा हैं खामोश रहने की नस्बत। और खामोश है क्या होगा, कोई क्या कहेगा आपको? बोली नहीं, आप बोलती नहीं, बोर कर रहे हैं, आपको बातें नहीं करनी आती। हाँ, नहीं आती। और आप बोलेंगे ना तो आपकी 10 बातों पर एतराज़ करेंगे, आपने मेरा मजाक किया है, आपने मुझे सुनाई है, मैंने आपको कोई बात बताई थी, आपने दूसरों को बता दी। तो पंजाबी या उर्दू में एक जुमला बोलते हैं ना, कि एक चुप 100 सुख। अल्लाह के नबी की 2 लफ्ज़ों की हदीस है, दोहरा ले बड़े सब। नजा मन समत, नजा मन समत, निजात पा गया जो चुप रहा। ठीक है, तो खामोशी बेहतर। देखिए, झूठ बोलने से भी खामोशी बेहतर है। घर में बड़े से बड़ा फितना, बड़ी से बड़ी मुश्किल आने का भी डर हो ना, और आप डर के झूठ बोल रहे हैं, ना बोले, चुप हो जाए। कोई दुनिया में आपसे उगलवा नहीं सकता। अमेरिका में एक लॉ है, ड्राइविंग के दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाए या उन्होंने चेक किया और आप पेपर्स नहीं लेकर आए, कुछ भी है, आप खामोश हो जाए, कुछ ना बोलें। इसको वो कहते हैं गिल्टी। या ये जुमला बोल दे, आई एम गिल्टी, छोड़ देते हैं आपको। क्यों? क्या आप गिल्टी हैं? तो वो गुलवा ही नहीं सकते, बिल्कुल चुप रहे। इसी तरह कई जगह ऐसी सेंसिटिव होती हैं, इमिग्रेशंस हैं, कोई इंटरव्यूज़ हैं, आप चुप हो जाए, कोई नहीं गुलवा सकता। और अगर आप एक बात करेंगे ना, वो आपसे दूसरा क्वेश्चन करें, वो इधर से लाएंगे, इधर से। इसलिए जो इस फील्ड के माहिर है, वो कहते हैं पुलिस सामने आ जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन आ जाए, कोई मीडिया का बंदा सामने आ जाए, आप चुप हो जाएं, क्या कहेगा आपको? और एक ही बात दोबारा दोहरा दें, फिर वो ज़रा सा घुमा के पूछे, फिर चुप हो जाएं, वही बात दोहरा दें, कोई बंदा आपके मुंह से लफ्ज़ नहीं छीन सकता। और यकीन करें, अगर इस दर्जे की ज़ुबान की हिफाजत हो जाए, हम बहुत कुछ करने लग जाए। हम बहुत वक्त बोल बोल के अपना भी सर खाते हैं, दूसरों का भी। सुकूत बजाय खुद इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो चुप रहे या अच्छी बात करे, बुखारी की रिवायत है। बुरी बातें करने की निस्बत या ला यानी बातें करने की निस्बत खामोशी बेहतरीन है। उलमा को चाहिए कि वो हसबे मौका थोड़ी लेकिन जामे बात करें। ये भी बड़ी अहम बात है। लंबे लंबे दर्स नहीं देने चाहिए, घंटों लोगों को बिठा के कभी हंसाना कभी रुलाना नहीं चाहिए। कलाम कौन सा अच्छा होता है? कल्ला वल दल्ला, कल्ला कलील हो, थोड़ा हो, मुख्तसर, और दल्ला दलील वाला हो, मुदल्लल हो। अल्लाह के नबी तो जवामिल कलिम थे। दो लफ्ज़ों की हदीस है, तहादु तहाबु, हदिया दो मोहब्बत हो गई, तहादु तहाबु, क्या पता चला? तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है ना। आप दो लफ्ज़ों में ये बात कह दी, आप इसको 15 मिनट में एक्सप्लेन करें, अगला बोर हो जाएगा। तो हमेशा अपने बच्चों को डांटें, अपने मियाँ को कोई बात समझाएं, घर वालों से कोई बात करनी, चंद जुमले बोल के चुप हो जाए। यकीन करें, हम अपनी ज़ुबान में अगले को कायल कर रहे होते हैं, लेकिन वो अगला कहता है बड़ा बोलती है, दलीलें बड़ी देती है, चर्ब ज़ुबान है, खामोश रहे। जिसको थोड़ी नहीं समझ आई, उसको ज़्यादा भी नहीं आपकी समझ आनी। और जहाँ खामोशी से काम निकलता हो ना, वहाँ लफ्ज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। सैयद अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अपने मुँह से अपने कानों को इंसाफ दिलाओ, तुम्हें कान दो दिए गए और मुंह एक, ताकि बोलने से ज़्यादा सुनो। इतना फितरी निज़ाम है। अगर दो ज़ुबानें होती, ज़रा सोचिए, आपस में ही लड़ती रहती। अभी तो दो लोगों की ज़ुबानें बोलती हैं ना, सास बहू बोल रही हैं तो लड़ाई, माँ भी बोली तो बेटी भी बोली तो झगड़ा, एक बोला तो दूसरा भी बोला तो झगड़ा ना। अगर हमारे अपने मुँह में दो ज़ुबानें होती, हम सारा दिन अपने से लड़ रहे होते। तो ज़ुबान एक, कान कितने हैं? और आप एक तरफ के कान पे हाथ रखें, अब मैं अपना रख के देख रही हूँ, तो जो मैं बोल रही ना, बात मेरे ही अंदर रुक रही है, बाहर नहीं निकल रही। कान दो दिए, सुनो ज़्यादा, बोलो कम। लुकमान से पूछा गया, आपको हिकमत किस तरह मिली? जवाब दिया, मैं बेज़रूरत कोई सवाल नहीं करता और बेमकसद गुफ्तगु नहीं करता। याद रखिए, जो ये बातें अपना लेगा ना, उसके अंदर ख़ुद बहुत वक़ार भी आएगा और बुर्दबारी भी। इमाम नखई रहमहुल्लाह ने कहा, जब कोई आदमी किसी से कहे, ए गधे, ए खिंजीर, यानी बुरे बोल बोले, बुरा लक़ब दे, तो क़्यामत के दिन इस उससे कहा जाएगा, क्या तूने मेरे मुतल्लिक ये समझा था कि मैंने इसे गधा या खंजीर बना दिया? अस्तग़फिरुल्लाह, किसने बनाया उसको? अल्लाह ने। और आप देखिए कि नीचे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, मिनहाजुल कासिदीन बहुत अहम बुक है, उसके अंदर पेज 280 पे ये बात लिखी हुई है। तो क्या पता चला सारी बात का खुलासा? यहाँ तो एक पेज का ये टॉपिक है, इस पे तो घंटों के दर्स और पूरी पूरी बुक्स हैं। ज़ुबान की हिफाजत। आप देखिए, हिफाजत लफ्ज़ के साथ जहन में क्या आता है? कीमती चीज़। हम अमूमन कीमती चीज़ों की हिफाजत करते हैं ना, यानी गोल्ड है तो उसकी हिफाजत करेंगे, आर्टिफिशियल की परवाह नहीं करते। और किसकी हिफाजत करते? गाड़ी, नई गाड़ी है तो ज़्यादा फिक्र लगी रहेगी, नया कपड़ा पहना हो तो उसकी हिफाजत है, रफ़ एंड टफ पुराने कपड़े कुछ नहीं होता। इसका मतलब कि ज़ुबान बड़ी कीमती है, इसकी हिफाजत करनी है। कहते हैं कि किसी ने ज़ुबान से कहा कि तुम 32 दुश्मनों में कैसे रहती हो? कौन दुश्मन है? कैसे कट सकते हैं? आप देखिए, दिन में 10 दफ़ा हमारे दांत कटे होते हैं अगर ज़ुबान नरम ना होती। तो कहा कि मैं अपनी नरमी की वजह से दुश्मनों के बीच में भी हूँ। ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी, नरम दमे गुफ्तगु, गरम दमे जस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक जू। अल्लामा इकबाल ने एक लीडर की खूबियाँ बयान की थी कि बोलने में नरम, काम करने में गर्म, यानी कि ठंडा ढीला डाला, ना खुद करे ना दूसरों को करने दें, कि रज़्म हो के बज़्म हो, अकेले में या तन्हाई में पाक दिलो पाक जो दिल पाक होना चाहिए। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला कैसे बड़ी इमामत अता करता है। और बहुत कुछ है इस पे, और मेरा ख्याल है कि ये आप मज़ीद भी सीखते ही जाएंगे। कोई नियत करें, चंद सेकेंड में चुप रहती हूँ। मैं भी इसलिए चुप रहती हूँ कि मैं अपनी ज़ुबान की हिफाजत करूँ। आप इस सोच के साथ इस वक्त सोचें, अपनी ज़ुबान का कोई लूप होल ढूँढें। देखिए, मसलन ज़ुबान की आफतें हैं ना, और एक बच्ची ने बहुत साल पहले एक एक्टिविटी बनाई थी, मैं अमेरिका में थी तब, तब से मुझे याद है, अलम नजल लहू ऐनैन व लिसानम व शफतैन वाली आयत थी कुरान में, तो उस पर वो अगले दिन बनाकर लाई थी। तो उसने क्या किया, आँखें बनाई, तो पलकें ऐसे खींच के ना, तो आंखों के गुना लिखे जो भी होते हैं, वो फर्श देखना, नामहरम को ताड़ना, इस तरह आंखों पलकों हर के ऊपर उसने यूं लिखे और उसको ऐसी पलकों की शेप दी। चले वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव था, लेकिन जब उसने अलम नजल्लाहु ऐनी व लिसानम व शफतैन, जब उसने होंठों और ज़ुबान का किया, तो उसमें होंठ बना के ना उसके मुंह में से एक ज़ुबान निकाली और उसके आगे ना जैसे सांपों के फंग नहीं होते, छोटे छोटे सांप बना दिए, और वो ज़ुबान की आफतें लिखी, ज़्यादा बोलना, ताने, इल्ज़ाम, गीबत, चुगली। आज भी जब मैं लफ्ज़ ज़ुबान की हिफाज़त देखती हूँ तो मेरे ज़हन में वो तसव्वुर आता है। तो आप सब अपना कोई ना कोई वीक पॉइंट तो होगा कि नहीं है, उस पर नियत करें मैंने इस पर काबू पाना है। बस हम बहुत बोलते हैं, सरसार कहते हैं, सरसरा, टॉकेटिव, कम करें, ऊंची बोलते हैं, आहिस्ता बोलें, सख्त लहजे से बोलते हैं, नरम से बोलें, बेतुक्का बोलते हैं, तुक के साथ बोलें, गिबत निकल जाती है मुंह से, उससे रुकेंगे, कोई अच्छी नीयत करें। अल्लाह ताला आपकी मेरी हिफाजत करे। और आप देखिए, जब तक मैंने अपने अपने ऊपर नहीं लेना, हमारे यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। मत सोचें कि आप दूसरों को फ़ायदा देने आए हैं इधर, देने वाले सबसे पहले लेते हैं। ज़ाहिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी तो पढ़ रही हूँ। सबसे करीब मेरे होंठों के, मेरी ज़ुबान के, तो मेरे अपने कान हैं। अगर सारे माइक बंद भी हो जाएं तो किसको बात ज़रूर आएगी? मुझे आएगी ना, और मेरे बहुत करीब वालों को आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमेशा खुद को सुनाएं। कोई सवाल, कोई बात? जी आप। ये बहुत अच्छा सवाल है कि गीबत हम खुद तो नहीं करते, कोई हमारे साथ कर दे। देखिए, इस पे एक पूरा टॉपिक है, सूरत हुजरात की तफसीर हमने की थी कुरान की कितने कोर्स में, उसमें पहले मुझे सही लफ्ज़ याद नहीं है, 20-25 टिप्स हमने काउंट की थी गीबत छोड़ने की। तो उसमें भी एक टिप ये थी, कोई आपसे कोई बात करे ना किसी की, तो आप उन्हें कहें अच्छा मैं उनसे पूछूंगी। बस अगर कोई किसी की बात कर रहा है, आप फ़ौरन फ़ोन पकड़ लें, अच्छा मैं भी उनसे पूछती हूँ, अच्छा मैं इनसे ज़रूर कहूँगी। जूँ ही आप कहेंगी ना, वो डर जाएगा, नहीं 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 उसको नहीं कहना, भैया आपने मुझे कहा है तो मैं कहूँगी। फिर सुनने में बेजारी का इज़हार करें, सुने ही ना, मूड ये सब ना ले के अगला आपसे बात ना करें, बात समझ गए? नियत करें, कोड वर्ड्स रखें, घर वालों के साथ मिल के, बच्चों के साथ मिल के ये मुहिम चलाएं कि बेटा अगर हम गीबत करने लगें एक दूसरे की तो टोक दो। बस हमको कोड वर्ड रख लें, मुर्दा भाई का गोश्त, पता लग जाएगा अम्मी गीबत करने लगी थी। तो फिर इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ शऊर है, पहले समझें कि ये गीबत है। लोग तो दुख सुख कहते हैं गीबत को, लोग तो दिल हल्का करना कहते हैं गीबत को, लोग कहते हैं सच बोल रही है झूठ थोड़ी है, तभी तो गीबत है, वरना बुख्तान होता। तो पूरी कोशिश करें, अल्लाह ताला आसानी करेगा, ठीक है।